समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में आपका हार्दिक स्वागत है। इस आधे घंटे की परिक्रमा में हम आपको बताएंगे देश विदेश की महत्वपूर्ण सुर्खियां, चलेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल जगत की हलचल पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। और आज श्रोताओं, आज देवशयनी एकादशी भी है। देवशयनी एकादशी के दिन चातुर्मास की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म में चातुर्मास के चार महीने बहुत ही शुभ माने जाते हैं और मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में चार महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से सीधा प्रबोधिनी यानी कि देवउठनी एकादशी पर जागते हैं। साथ ही आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है और इसी के साथ शुरुआत करते हैं। इस पर आगे भी बात करेंगे और इस श्रोताओं परिक्रमा के संग के साथ मैं हूं दिव्या तोमर और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी रेशमा तिवारी। रेशमा, आपको भी मेरा नमस्कार।
Namaskar Divya and good afternoon listeners. You are tuned into Parikrama on FM Gold at 100.1 MHz. I'm Reshma Tiwari and with me today is my co-host Divya Tomar. Listeners, for you we have a selection of news, our discussion segment Dateline India, reports, capsules, tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
भारत और अर्जेंटीना कार्यनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने पर सहमत। दोनों देशों ने व्यापार और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रीचेस ब्राजील ऑन द फोर्थ लेग ऑफ हिज फाइव नेशन टूर टू पार्टिसिपेट इन द 17th ब्रिक्स समिट बिगिनिंग टुनाइट।
हिमाचल प्रदेश में मॉनसून का कहर जारी, मंडी और चंबा में बादल फटने की खबर। मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की।
आशुराए मुहर्रम बीइंग ऑब्जर्व्ड विद ड्यू रेवरेंस एंड सॉलेमनिटी इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री।
अमरीकी उद्यमी एलन मस्क ने अमरीका में दो पार्टियों वाली व्यवस्था को चुनौती देते हुए नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की।
Flash floods in Texas leave at least 51 dead, including 51 children, several still reported missing. And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. Today, we'll talk about the second phase of Ek Ped Maa Ke Naam and Zoonotic Diseases Prevention Day. First, Ek Ped Maa Ke Naam 2.0. The second phase of Ek Ped Maa Ke Naam was launched by Prime Minister Narendra Modi on World Environment Day. The essence of Ek Ped Maa Ke Naam is a symbolic gesture planting a tree in the name of one's mother. This simple act serves a dual purpose, honoring the role of mothers in nurturing life and contributing to the health of the planet. Trees are life-sustaining, and just like a mother, they provide sustenance, protection, and a future for the next generation. Through this initiative, participants can create a lasting memory, planting a tree as a living tribute to their mothers, while also addressing the pressing need for environmental preservation.
बिल्कुल रेशमा, और प्रकृति हमारी माँ है और वृक्षारोपण को माँ से जोड़ना प्रकृति के साथ हमारी आत्मीयता को दर्शाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर एक राष्ट्रीय हरित परियोजना की शुरुआत के दौरान एक भावुक क्षण सामने आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर सिंदूर का एक पौधा लगाया जो उन्हें गुजरात के कच्छ की बहादुर महिलाओं ने उपहार में दिया था, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान साहस और बलिदान का उदाहरण पेश किया था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका को अब एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तहत सरकार का लक्ष्य है कि जून से सितंबर 2025 के बीच पूरे भारत में 10 करोड़ पेड़ लगाए जाएं।
Yes, returning to Delhi, Prime Minister Modi said the sindoor plant is a symbol of valor, bravery, resilience and the essence of Indian women. In a post on his X handle, PM Modi stated, "The brave mothers and sisters of Kutch, who set an example of courage and valour in the 1971 war, recently presented me with a sindoor plant during my visit to Gujarat. I have had the privilege of planting that sapling in Delhi. This plant will remain a strong symbol of the valour and inspiration of the women power of the country."
और प्रधानमंत्री के इस कदम ने हरित पहल में एक भावनात्मक स्वर जोड़ दिया है और उस सांस्कृतिक लोकाचार को मजबूत किया है जो प्रकृति और मातृत्व को पोषण की एक दूसरे पर निर्भर शक्तियों के रूप में देखता है।
In Delhi, Union Minister for Education Dharmendra Pradhan formally launched the Ek Ped Ma Ke Naam 2.0 campaign. In the previous year, over 5 crore trees were planted by educational institutions across the country.
और इस बार इस अभियान का लक्ष्य दोगुना कर दिया गया है क्योंकि सरकार का लक्ष्य 10 करोड़ पौधे लगाना है जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत डिजाइन किए गए इको क्लबों और अनुभवात्मक शिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से छात्र भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया है।
Anyways, India has never been a polluting nation. Our civilization believes in Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world is one family, and it is hoped that India's vision of net zero by 2070 will be driven by environmental awareness embedded within the nation's youth.
और हाल ही में लॉन्च किया गया वेब पोर्टल ecoclubs.education.gov.in इस अभियान के लिए केंद्र के रूप में काम करेगा। 14,70,000 से अधिक स्कूलों की भागीदारी के साथ ये पोर्टल स्कूलों को वृक्षारोपण गतिविधि रिपोर्ट अपलोड करने, डैशबोर्ड असाइन करने और सफल अपलोड पर ई प्रमाण पत्र बनाने में सक्षम बनाता है। ये बहुभाषी है और मिशन लाइफ पहल यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली के 7 विषयों को शामिल करता है।
The integrated microsite for Ek Ped Ma Ke Naam 2.0 makes the campaign interactive. Students and citizens can upload selfies with their saplings dedicated to their mothers, following which certificates are awarded to foster a personal bond with the green cause.
पर्यावरण शिक्षा को और अधिक गहन बनाने के लिए स्कूली छात्रों के लिए 3 विशेष रूप से डिजाइन किए गए मॉड्यूल लॉन्च किए गए हैं। ये मॉड्यूल माताओं की पोषण छवि को धरती माता के साथ जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बच्चों को QR आधारित वनस्पति मानचित्रण, स्कूल पोषण उद्यान, शोध कार्य और प्रकृति पहेलियों जैसी व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण योद्धा बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
And as India begins its journey towards achieving Viksit Bharat by 2047, projects like Ek Ped Ma Ke Naam 2.0 are sowing the seeds, quite literally, for sustainability. At once, both personal emotional connection and planetary responsibility by dedicating a tree to one's mother conveys a sense of gratitude. The real challenge is how this can go beyond mere symbolism and work to ensure that the trees survive, thrive and effectively become a future green guardian.
बिल्कुल रेशमा, आपने सही कहा। और अब हम परिक्रमा के डेटलाइन सेगमेंट के दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है जूनोटिक डिजीज प्रिवेंशन डे। आज विश्व जूनोटिक रोग रोकथाम दिवस है। जूनोटिक रोग या जूनोसिस एक संक्रामक रोग है जो जानवरों और मनुष्यों के बीच फैलता है। ये रोग वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी और कवक जैसे विभिन्न रोगजनकों के कारण हो सकते हैं। जूनोटिक रोग काफी आम है। 60% से अधिक मानव रोगजनक जानवरों से उत्पन्न होते हैं। जूनोटिक रोग विभिन्न तरीकों से फैल सकते हैं जिसमें संक्रमित जानवरों के साथ सीधा संपर्क, उनके तरल पदार्थ जैसे लार, रक्त और मूत्र, काटने या दूषित भोजन, पानी या पर्यावरण के माध्यम से शामिल हैं। कुछ प्रसिद्ध जूनोटिक रोगों में रेबीज, लाइम रोग, वेस्ट नाइल वायरस और साल्मोनेला शामिल हैं।
यस, एंड COVID-19 इज ऑल्सो अ जूनोटिक डिजीज with a likely bat origin that has affected millions of humans along with devastating global consequences. Addressing zoonotic diseases requires a one health approach which recognizes the interconnectedness of human, animal and environmental health.
जूनोसिस एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है और ये मानव स्वास्थ्य के लिए एक सीधा खतरा है जो मौत का कारण भी बन सकता है। दुनिया भर में 13 सबसे आम जूनोसिस कम और मध्यम आय वाले देशों में गरीब पशुधन श्रमिकों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं और हर साल मनुष्यों में बीमारी के अनुमानित 2.4 बिलियन मामले और 2.7 मिलियन मौतें होती हैं।
In India, the research by the ICMR has suggested that in order to eliminate dog-mediated rabies by 2030, India must fast-track its action through focused health approach. ICMR has said that nearly 9.1 million animal bites and 5,726 human rabies deaths due to dog bites are estimated to occur every year in India. The dog bite incident was higher among children aged 0 to 14 years and elderly aged above 16 years.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. तो सबसे पहले हम रेशमा किधर जा रहे हैं?
We'll go to Odisha, Puri. The holy city of Puri is immersed in divinity and devotion as Lord Jagannath, along with his siblings Lord Balbhadra and Devi Subhadra, adorns the divine Shunabesha, the golden attire today. This grand spectacle follows the triumphant return of the deities to the main temple from Sri Gundicha temple. Devotees gathered in lakhs to witness the divine siblings ascend their majestic chariots. Here's a report.
More than 10 lakh devotees across the country and abroad are expected to witness this once a year golden spectacle today. The Shunabesha, meaning golden attire, features deities adorned with gold and ornaments. The administration and police have implemented elaborate security arrangements to ensure the smooth conduct of the event and the safety of the pilgrims. Over 10,000 police personnel, including special tactical units, intelligence teams, and disaster response forces, have been deployed across the city. Temple priests and sevayats are performing the rituals following centuries-old customs and traditions. The event is not just a religious ritual but a celebration of the enduring spiritual bond between the Lord and his devotees. For Parikrama, this is Itishri Singh Rathod.
और अब ओडिशा के बाद हम चलते हैं देश के दिल मध्य प्रदेश में. मध्य प्रदेश का इंदौर में देश का सबसे पहला शहर बन गया है जिसमें प्रत्येक घर को एक क्यूआर कोड आधारित डिजिटल पता दिया जाएगा. यानी अब तक हम सिर्फ फोन पे और जितने भी डिजिटल लेन देन थे वो सब क्यूआर से करते थे, लेकिन अब जो पता है इंदौर में स्पेशली वो डिजिटल हो जाएगा और क्यूआर कोड आधारित हो जाएगा. पिछले हफ्ते शुरू हुए इस प्रोजेक्ट से लोग अपने घरों पर डिजिटल एड्रेस की प्लेट लगवा रहे हैं और ये प्लेट भारत सरकार की डिजिटल पोस्ट इंडेक्स नंबर डीजीपिन योजना से जुड़ी होगी.
इंदौर के हर घर को ये डिजिटल पता एक सटीक और यूनिक डिजिटल पहचान देगा. नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने बताया कि सभी घरों के सामने एक डिजिटल प्लेट लगेगी जिसे स्कैन कर घर से जुड़ी जानकारी मिल सकेगी. इसके माध्यम से नागरिक संपत्ति कर, जल कर, बिजली बिल का भुगतान, विभिन्न प्रमाण पत्र और सेवा में कमी की शिकायत सहित 20 से अधिक सेवाएं ले सकेंगे. यूनिक क्यूआर कोड को स्कैन करते ही मोबाइल पर एक पेज खुलेगा जिससे इन सुविधाओं का लाभ लिया जा सकेगा. इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत पिछले हफ्ते महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सुदामा नगर से की है. महापौर श्री भार्गव ने बताया कि यह पता भारत सरकार के डीजीपिन प्लेटफॉर्म से जुड़ा होगा जिसे इंडिया पोस्ट ने आईआईटी हैदराबाद और इसरो के सहयोग से विकसित किया है. इसकी सहायता से बिना जीपीएस सुविधा के भी सटीकता के साथ घर को खोजना आसान होगा. इस क्यूआर कोड में घर की सामान्य पहचान ही होगी जिससे घर में निवास करने वाले व्यक्तियों की निजी जानकारी सुरक्षित रहेगी. प्रशांत शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल.
Today is Ashadhi Ekadashi, an occasion that resonates deeply with the people of Maharashtra and beyond. Like every year, the Wari, the iconic pilgrimage, has reached Pandharpur, where thousands of Varkaris have gathered to meet their beloved Vithumoli and Rakumai. However, there are many who, though unable to participate in the Wari physically, express their devotion through unique and artistic ways. One such devotee is Milinath Tavaskar from Sholapur in Maharashtra. More from our Mumbai correspondent.
Kashinath Tavaskar, an artist hailing from Malkavthe in Solapur and currently residing in Pune, has created an illustration of the divine duo Vithoba and Rakhumai on two grains of rice, highlighting Vithoba's iconic black form, his hands resting on his waist and adorned with gold ornaments, and Rakhumai in her traditional attire. This tiny and intricate painting beautifully captures the spirit of the Wari, the Varkaris, and the unique relationship they share with Vithoba and Rakhumai. Let us hear hear more from Kashinath Tavaskar himself.
One night while chatting and sorting rice, I came across two grains of rice stuck together. One was slightly bigger and other a bit smaller. When I saw them, they looked just like Vittu Mauli and Rukmai standing together. That's when I got the idea to paint Vittu Mauli and Rukmai on these rice grains. I had never painted on rice before, but I had seen on social media that an artist had painted Lord Jagannath of Puri on a tiny grains of rice. I felt that I could do it too, so I decided to start. I didn't have the materials, as micro art requires very fine brushes. I searched my area but couldn't find any suitable brushes. Then I realized that the brushes used for ladies' nail art are also very fine. So I bought nail art brushes and completed the painting in 3 to 4 hours.
Kashinath, apart from being an artist, also shares a deeply emotional bond with the deity he has painted on the grains of rice. Let's listen in.
Vittu Mauli and Rukmai are like my parents to me, because I lost my parents at a young age and my mother was a devoted follower of Vittu Mauli and Rukmai.
A glance at the literature, Abhangas and Bhajans dedicated to Vithoba reveals that he is often referred to as the giver, the provider of everything, even the humble morsels of food on the plates of the poor. Through his artwork, Kashinath Tavaskar has elevated this sentiment to an entirely new level by portraying Vithoba and Rukmai on the grains of rice itself. For Parikrama, this is Ankita Apte from Mumbai.
And Divya, let's now look at the world of sports.
बिल्कुल. और भाला फेंक स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने पहली नीरज चोपड़ा क्लासिक प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है. कल बेंगलुरु में नीरज ने 86.18 मीटर तक भाला फेंका. वहीं भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने अगले वर्ष ऑस्ट्रेलिया में होने वाले एएफसी एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है. भारत के यूकी भामरी और अमरीका के रॉबर्ट गैलोवे विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं.
That was javelin, football and tennis. Now cricket. Spell of heavy rain half an hour before the scheduled start time delayed action on day 5 of the second test of the Anderson Tendulkar Trophy at Edgbaston, Birmingham. India are aiming to seal the first ever test win at Edgbaston. England will resume on 72 for 3, needing 536 runs more to achieve the daunting target of 608. India needs 7 wickets to clinch a historic victory and level the 5-match series at 1-1. On day 4 yesterday, Indian skipper Shubman Gill delivered one of the greatest individual performances in Test history. Gill amassed 430 runs across both innings, 269 in the first and 161 in the second, recording the second highest aggregate in a Test match behind only Graham Gooch's 456 against India in 1990 at Lord's. India's second innings was further bolstered by valuable contributions from KL Rahul with 55 runs, Rishabh Pant with 65 runs and Ravindra Jadeja, who remained unbeaten on 69, helping the visitors set a mammoth lead of 608 runs before declaring. This left England facing the second highest fourth innings target ever set against them in Test history.
और अब समय है उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस. इस क्रम में सबसे पहले हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को याद करेंगे.
6th of July 1837 is the birth anniversary of R.G. Bhandarkar, who was one of India's pioneer social reformers and first Orientologists. He reconstructed the political history of the Satvahans of the Deccan and the history of Vaishnavism and other sects. As a great social reformer, through his researches, he castigated the evils of the caste system and child marriage.
Bhandarkar became a member of the Paramhans Sabha in 1853, where he was inspired by the lectures of Keshub Chandra Sen. In the year 1866, in a public meeting, he took a public pledge to eradicate the social evils of child marriage, the caste system, and to promote the education of women and widow remarriage.
Thus, to attain the objectives, R.G. Bhandarkar, along with M.G. Ranade, helped found the Prarthana Samaj in 1867. As an educationist, he was elected to the Imperial Legislative Council in 1903 as a non-official member. Gopal Krishna Gokhale was another member of the council.
R.G. Bhandarkar was also the first Indian Vice Chancellor of Bombay University and the first Indian to be awarded an LLD degree by the university in 1904. Justice Ranade had a great respect for Dr. Bhandarkar. Ranade said,
Dr. Bhandarkar's stature is no less than the great leaders of Brahmo Samaj. He's not just an eminent scholar. He's greater than that. He's a guide. He has been an example by himself and a teacher from whom we receive the best instructions in our life.
Dr. Bhandarkar left this world on the 24th of August 1925. We salute the great nationalist.
We also remember freedom fighter and crusader of social justice, Babu Jagjivan Ram, on his death anniversary. Born in Bhojpur, Bihar, Jagjivan Ram played a very active role in the freedom struggle. He became a legislator at the young age of 28 in the year 1936 as a nominated member of the Bihar Legislative Council. When the Congress government was formed in 1937, Jagjivan Ram was appointed as the parliamentary secretary. However, in 1938, he resigned along with the entire cabinet.
Inspired by Gandhiji, Jagjivan Ram courted arrest on the 10th of December 1940. He was again arrested on the 19th of August 1942 for his active participation in the Quit India movement. After his release, he became the youngest minister in the interim government in 1946. He also served as a member of the Constituent Assembly of India.
Post-independence, Babu Jagjivan Ram went on to serve as a minister with various portfolios for the next 30 years. His contribution to the Green Revolution in India is still remembered. The great nationalist leader left for his heavenly abode on the 6th of July 1986. Salutes the great son of the soil, Babu Jagjivan Ram.
We also remember martyr Sadhu Singh, who was born on the 6th of July 1921 in Kapurthala, Punjab. Sadhu Singh was a sepoy in the Bahawalpur infantry of the British Indian Army. Following his capture by the Japanese forces in Singapore in 1942, he volunteered to join the Indian National Army there. He confronted the British forces in the battlefields of Ipoh, Pegu and Rangoon. Sadhu Singh lost his life while fighting on the Burmese front in 1944. We salute this brave martyr.
प्रताप नारायण मिश्र की आज पुण्यतिथि है. वे आधुनिक हिंदी निर्माताओं में से एक जाने जाते हैं. प्रताप नारायण मिश्र हिंदी खड़ी बोली और भारतेंदु युग के उन्नायक कहे जाते हैं. प्रताप नारायण मिश्र ने एक लेखक, कवि और पत्रकार के रूप में विशेष प्रसिद्धि पाई. मिश्र जी की भारतेंदु हरिश्चंद्र में अनन्य श्रद्धा थी और वो स्वयं को उनका शिष्य भी कहते थे और देवता के समान उनका स्मरण भी करते थे. और यही कारण है कि भारतेंदु जैसी रचना शैली, विषय वस्तु और भाषागत विशेषताओं के कारण ही प्रताप नारायण मिश्र को प्रति भारतेंदु या द्वितीय चंद्र कहा जाने लगा था. मिश्र जी द्वारा लिखे निबंधों में देश प्रेम, समाज सुधार एवं साधारण मनोरंजन आदि मुख्य विषय थे. और मिश्र जी भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखकों में से एक थे. उनकी रचनाएं हैं कानपुर महात्म्य और नाट्य साहित्य में कली प्रवेश, दूध का दूध, पानी का पानी, कहानियों में कथा बाल संगीत और उनकी आत्मकथा है प्रताप चरित्र.
It is the death anniversary of Sir Thomas More also. Venerated in the Catholic Church as Saint Thomas More, he was an English lawyer, social philosopher, author, statesman and noted Renaissance humanist. Born on 7 February 1478, Sir Thomas More was also a Chancellor to Henry VIII and Lord High Chancellor of England from October 1529 to 16 May 1532. He wrote Utopia, published in 1516, about the political system of an imaginary ideal island nation. More opposed the Protestant Reformation, directing polemics against the theology of Martin Luther, John Calvin and William Tyndale.
और आज ही पुण्यतिथि है अमृतलाल बेगड़ की. वे प्रसिद्ध साहित्यकार, चित्रकार और नर्मदा प्रेमी थे. उन्होंने नर्मदा नदी के संरक्षण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई और पर्यावरण संरक्षण के लिए उल्लेखनीय काम किया. उन्होंने नर्मदा की 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की. उन्होंने नर्मदा नदी के आसपास फैली अद्भुत जैव विविधता से दुनिया को परिचित कराया. उन्होंने 1977 में 47 वर्ष की आयु में नर्मदा परिक्रमा करनी शुरू की, जो 2009 तक जारी रही। उनकी नर्मदा वृतांत की 3 पुस्तकें हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में प्रकाशित हुई। उन्हें गुजराती और हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार और महापंडित राहुल संकृत्यायन पुरस्कार जैसे अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सौंदर्य की नदी, नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और आज ही पुण्यतिथि है प्रसिद्ध हिंदी फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक चेतन आनंद की। चेतन आनंद सदाबहार अभिनेता देवानंद के बड़े भाई थे। इतिहास के शिक्षक रहे चेतन ने वर्ष 1940 के दशक के शुरू में सम्राट अशोक पर एक फिल्म की पटकथा लिखी थी। उनका फिल्मी सफर वर्ष 1944 में आई फनी मजूमदार की फिल्म राजकुमार से शुरू हुआ। उस फिल्म में वो मुख्य भूमिका में थे। चेतन ने अभिनय छोड़कर निर्देशन के क्षेत्र में किस्मत आजमाई और जल्द ही उन्होंने इतिहास रच दिया। 1946 में निर्देशक के तौर पर उनकी पहली फिल्म नीचा नगर ने कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार हासिल किया। इसके अलावा उनकी कई फिल्मों को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड मिले। उन्होंने फिल्म जगत में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ख्याति बटोरी। और आइए सुनते हैं उनकी ही फिल्म ही रांझा से ये गीत।
मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम्हीं को दिल का राज बताए, तुम्हीं से
रिमेम्बरिंग Shyama Prasad Mukherjee today, because he was born on 6 July 1901. He was a politician, barrister and academician who served as the Minister for Industry and Supply in Prime Minister Jawaharlal Nehru's cabinet. He quit the Union government because of differences of opinion with the government on the issue of Jammu and Kashmir. With the help of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, he founded the Bharatiya Janata Jan Sangh, the predecessor of the BJP, in 1951. He was also the president of Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha from 1943 to 1946. Mukherjee was strongly opposed to Article 370, seeing it as a threat to the unity of the country, and fought against it inside and outside of the parliament, with one of the goals of Bharatiya Jan Sangh being the abrogation of the article. His dream to repeal Article 370 saw the light of day on 5th August 2019, with the bill being tabled in Rajya Sabha.
Aur aaj jayanti hai prasiddh film nirmata nirdeshak Mani Kaul ki. उनकी जो फिल्म है आषाढ़ का दिन और सतह से उठता आदमी जैसी यथार्थ की पृष्ठभूमि से जुड़ी लीक से हटकर फिल्में बनाने के लिए उनको याद किया जाता है और वे नए भारतीय सिनेमा के पुरोधाओं में से एक माने जाते हैं। उनकी फिल्में हैं उसकी रोटी, आषाढ़ का एक दिन, दुविधा, इडियट, नौकर की कमीज। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म आषाढ़ का एक दिन का ये संवाद।
निष्णात आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक देव मातृगुप्त के राजमहर्षि गुप्त वंश दुहिता परम विदुषी देवी प्रियंग मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक हैं और शीघ्र ही यहाँ आया चाहती हैं। हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं।
भारत के रक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर नौतम भट्ट की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने भारत को रक्षा सामग्री के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, ब्रह्मोस, धनुष, तेजस, ध्रुव, पिनाका, अर्जुन, लक्ष्य, निशांत, इंद्र, अभय और भीम, मैसूर, विभूति, कोरा, सूर्य आदि भारतीय शस्त्रों के विकास में उनका अद्वितीय योगदान रहा। और
And it's also the birthday of Sylvester Stallone, born as Michael Sylvester Gaudenzio Stallone on July 6, 1946. He's an American actor, director, screenwriter and producer. He won his first critical acclaim as an actor for his co-starring role as Stanley Rosillo in The Lords of Flatbush. Stallone mostly only found gradual work as an extra or side character in films with a sizable budget until he achieved his greatest critical and commercial success as an actor, starting in 1976 with his self-created role as the boxer Rocky Balboa in the first film of the successful Rocky series between 1976 to 2018.
और आज प्रसिद्ध वैज्ञानिक दौलत सिंह कोठारी की जयंती है। वो उन लोगों में शामिल थे जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विज्ञान नीति का हिस्सा थे, जिसमें दौलत सिंह कोठारी के अलावा होमी भाभा, मेघनाथ साहा और सीवी रमन थे। 1964 में उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया। 1961 में वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी नियुक्त हुए। और इसके साथ ही अब आपसे अनुमति लेने का समय हो चला है श्रोताओं, तो मुझे और रेशमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।